नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए पर्चा भरने का आज अंतिम दिन। भारत ने केन्या के बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता की दूसरी किस्त भेजी। 77वां कान फिल्म महोत्सव आज से फ्रांस में शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार नामांकन भरा। वाराणसी में सातवें और अंतिम चरण में मतदान होगा। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने गंगा में डुबकी लगाई और काशी के कोतवाल कालभैरव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, रामदास अठावले और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और हरदीप सिंह पुरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। श्री मोदी के चार प्रस्तावकों में पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल हैं। वाराणसी से विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस के अजय राय श्री मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए नामांकन करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में सात राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर सातवें चरण में वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए अगले महीने की 1 तारीख को मतदान होगा। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वे आज दोपहर बाद बोनगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाद में वे उलूबेरिया लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एक अन्य जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में पांचवें और शेष चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन के कारण भाजपा के स्टार प्रचारकों ने आज के पार्टी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी के साथ रैली कर रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के नेता और पार्टी उम्मीदवार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश में आज सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमेठी का दौरा कर रहे हैं। वे भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में अमेठी के मुंशीगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा के विरूद्व चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में आज प्रचार कर रही हैं और जनसभा को संबोधित कर रही हैं। जालौन जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने के लिए भाजपा की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। वे आज दोपहर बाद झांसी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री खड़गे महाराजगंज में एक अन्य रैली को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है। यहां इस महीने की 25 तारीख को 6 चरण में वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला है। भाजपा सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राजधानी दिल्ली में राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। आज भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पश्चिमी दिल्ली के मटियाला और पार्टी नेता और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान भी शहर में दो सभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बदरपुर इलाके में, जबकि पार्टी सांसद संजय सिंह विकासपुरी क्षेत्र में प्रचार की कमान संभालेंगे। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कई अन्य स्थानीय नेता शहर के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क करेंगे। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
लोकसभा चुनाव के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं ओडिशा के बरगढ़ संसदीय सीट की।
अगर उड़ीसा के 21 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है, इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। ये एक जनरल श्रेणी संसदीय क्षेत्र है। इसमें उड़ीसा के पूरा बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिला शामिल है। इस लोकसभा क्षेत्र के लिए आम चुनाव के पांचवें चरण में इसी महीने के 20 तारीख को मतदान होगा और नतीजे 4 जून को घोषित किया जाएगा। इस बार कुल 13 लाख मतदाता 1397 मतदान केंद्र पर अपना मत डालेंगे। इस बार बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पद्मपुर के पूर्व विधायक प्रदीप पुरोहित को टिकट दिया है, जबकि परिणीता मिश्रा को बीजेडी ने टिकट दिया है। कांग्रेस ने बरगढ़ से पूर्व सांसद रहे संजय भोई को मैदान में उतारा है। इस बार वोटरों के बीच कोई राष्ट्रीय मुद्दा चर्चा में नहीं है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
भारत ने केन्या में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 40 टन दवाओं, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों की मानवीय सहायता की दूसरी किस्त भेजी है। भारत ने टेंट, कंबल, बिजली उत्पादन सेट, बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं, स्वच्छता किट, शिशु आहार, मलेरिया और डेंगू निदान किट तथा विष रोधी उपचार भेजे हैं। सहायता की पहली किस्त नौसेना जहाज सुमेधा में भेजी गई और इस महीने की 10 तारीख को केन्या सरकार को सौंप दी गई। इसमें बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन, राहत और दवा आपूर्ति शामिल थी। केन्या में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ के कारण 267 लोगों की मौत हो गई है और 188 लोग घायल हुए हैं। 2,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केन्या को सहायता दक्षिण दक्षिण सहयोग की भावना और अफ्रीका को अपनी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप देश के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुनरावृत्ति है। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अनुस्मरण रजिस्टर में शामिल किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि यह समावेशन भारत के लिए एक गौरव की बात है, जिससे देश की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि होती है। ये वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों को और आगे ले जाने का प्रतीक है, जो हमारी साझा मानवता को आकार देने वाली विविध कथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को पहचानने और सुरक्षित रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इन साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियों का सम्मान करके समाज न केवल उनके रचनाकारों की रचनात्मक प्रतिभा के प्रति श्रद्धावनत होता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनका गहन ज्ञान और कालजयी शिक्षाएं भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहें और उनका ज्ञान बढ़ाती रहें। फ्रांस के कान में आज 77वां कान फिल्म महोत्सव शुरू हो रहा है। भारत भी इस 12 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहा है। भारतीय प्रतिनिधि दल में भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा फिल्म उद्योग से जुड़े लोग शामिल हैं। भारत इस महोत्सव में पहली बार भारत पर्व की मेजबानी कर रहा है। फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन भारतीय फिल्म जगत के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक मंच होगा। भारत पर्व में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIF के पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरण किया जाएगा। IIFFI का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। भारत का घरेलू कोयला भंडार इस वर्ष 26% बढ़कर 14,90,00,000 टन हो गया। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अप्रैल महीने में देश का कोयला उत्पादन 7.31% बढ़ा। श्री जोशी ने कहा कि कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति प्रति वर्ष 5.43% की दर से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश कोयले की सर्वाधिक मांग को पूरा करने की स्थिति में है। जम्मू के त्रिकुटा नगर में कल केंद्र सरकार स्वास्थ्य आरोग्य योजना CGHS का दूसरा केंद्र खोला गया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि इस केंद्र के उद्घाटन से बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लंबे दिनों का संघर्ष समाप्त हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं डाले जाने के कारण मैच रद्द होने के बाद गुजरात टाइटन्स की टीम लीग से बाहर हो गई। दोनों टीमों को एक एक अंक दिए गए। आभा खटुआ ने भुवनेश्वर में नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में 18.41 मीटर की दूरी तक महिलाओं की गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। और इटली ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन की जोड़ी का मुकाबला इटली की सिमोन बोलेल्ली और एंद्रिया बाउसेरी की जोड़ी से होगा। दूसरे मुकाबले में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी ने इटली की पसारो फ्रांसिस्को और मटियो अर्नाल्डी की जोड़ी को 32वें राउंड में 6-2, 6-2 से सीधे सेटों में हराया था। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के गोबुक और रामसिंह गांवों में पहली सियांग जैव विविधता बैठक 2024 चल रही है। सप्ताह भर चलने वाली इस जैव विविधता बैठक की शुरुआत 12 मई को हुई थी। ये बैठक 18 मई को समाप्त होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान सह वन्य जीव प्रभाग और तितली न्यास के समर्थन से एपम सिरम वेलफेयर सोसायटी के सहयोग से गोबुक वेलफेयर सोसायटी द्वारा किया गया है। सिर्फ ऊपरी सियांग जिले में हाल के वर्षों में 10 नई प्रजातियों के कीटों का पता चला है। यह खबर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका ट्रॉपिकल लेपिडोप्टेरा रिसर्च में प्रकाशित की गई है। इन नई प्रजातियों की खोज ने इस जिले में सियांग जैव विविधता बैठक का द्वार खोला है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स इस महीने की 18 तारीख को कालिम्पोंग में सर्विंग दोज हु सर्वड अस शीर्षक से पूर्व कर्मियों की एक रैली आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों के अनुभवी कर्मियों को समर्थन देना और सम्मानित करना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में असम राइफल्स के लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर इस रैली का संचालन करेंगे। ये रैली कालिम्पोंग मुख्यालय 27 डिवीजन के फुटबॉल ग्राउंड में सुबह 5:30 बजे शुरू होगी। इस रैली के लगभग 3 घंटे तक चलने की आशा है। पूर्व कर्मियों को इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत ने नीदरलैंड के रोटरडैम में चल रहे विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 में अपना पहला पवेलियन स्थापित किया है। इस पवेलियन का अनावरण नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने किया। ये हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश की प्रगति को दर्शाता है। इस सम्मेलन में दुनियाभर से लगभग 15,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत ने वर्ष 2030 की समाप्ति तक 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ पिछले साल जनवरी में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम शुरू किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल कोंकण के विभिन्न भागों में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में कल से शनिवार तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों और बिहार में भी बृहस्पतिवार से अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 मई तक देश के दक्षिणी क्षेत्रों में गरज के साथ कई जगहों पर तेज वर्षा जारी रह सकती है। मध्य और पूर्वी भारत में भी आज कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए पर्चा भरने का आज अंतिम दिन। भारत ने केन्या के बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता की दूसरी किस्त भेजी। 77वां कान फिल्म महोत्सव आज से फ्रांस में शुरू हुआ। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।